स्थित प्रज्ञ के लक्षण देख रहे थे। तो अर्जुन का प्रश्न था, श्लोक नंबर 54 के अंदर उसका ये प्रश्न था कि स्थित प्रज्ञ के हमें लक्षण बताइए, समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ से का भाषा, का भाषा मतलब समाधिस्थ अवस्था। उस अगर प्रश्न को हम देखें तो उसमें चार प्रश्न हैं। चार प्रश्न के अंदर पहला प्रश्न जो है समाधिस्थ अवस्था का है, और बाकी तीन प्रश्न जो है कौन सी अवस्था के हैं? जागृत अवस्था। उसका क्या हिंदी वर्ड क्या है, संस्कृत वर्ड? व्युत्थित। व्युत्थित विशेष उत्थित, जब उसको हम संधि करते हैं तो व्युत्थित हो जाता है, विशेष रूप से उत्थित। उत्थित मतलब जागा हुआ है। व्युत्थित अवस्था के तीन प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है का भाषा। तो भाषा के अंदर हमने देखा कि उसकी स्थिति कहाँ है, आत्मा में है, उसको सुख की प्राप्ति हो रही है मगर बिना वृत्ति के। देखो संभल के रहना, हम सुख की प्राप्ति होती है बिना वृत्ति के, हम सबको सुख की प्राप्ति होती है वृत्ति के सहित। हमने कोई अच्छी चीज देखी, खाई, छुई तो क्या लगता है उसको, जिसकी वृत्ति आती है सुख की वृत्ति, तो हम बोलते हैं हम सुखी हैं। जब हमको दुख की वृत्ति आती है तो दुखी हैं हम बोलते हैं, सुखी दुखी। तो विषयों का जो सुख है ना वो बराबर वृत्ति जनित है, वृत्ति के ऊपर आधारित है। आत्मा का सुख वृत्ति के बिना है। देखो ये थोड़ी सी महीन बात समझ लो, आत्मा का सुख बिना वृत्ति का है, बाकी सारे सुख वृत्ति जनित हैं। कहने का मतलब आत्मा का सुख सब विकल्प नहीं है, विकल्प मतलब वृत्ति, सब विकल्प नहीं है, बिना विकल्प के बिना वृत्ति के वह है। और हमने देखा था 55वें नंबर श्लोक में आत्मनि आत्मनः तुष्टः, वो आत्मा से तुष्ट है, उसको बाहर की कोई चीज नहीं चाहिए फिर भी वो सुखी है। फिर व्युत्थित अवस्था के तीन प्रश्न थे। पहला प्रश्न था स्थित दिम किम प्रभाषित, किम प्रभाषित, कैसे वो बोलता है। देखो सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर मन की दृष्टि से दिए गए हैं, उसके बाहर में कोई कुछ आपको नजर नहीं आएगा। आपके बगल में भी स्थित प्रज्ञ बैठा होगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि बदलाव कहाँ है, मन के अंदर है। मन बदल जाता है, उसका विजन बदलता है। तो किम प्रभाषित, तो बोलते हैं देखो स्थित प्रज्ञ के जीवन में भी सुख दुख आता है, ऐसा नहीं है। आप ये नहीं सोचना कभी कि स्थित प्रज्ञ जो है वो ब्रह्मानंद में है, उसको सुख दुख नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, उसको स्थित प्रज्ञ या जीवन मुक्त भी रोक नहीं सकता उसको, वो आएंगे क्योंकि वो प्रारब्ध है। मैं उसका पुनर्जन्म नहीं है, और पुराने जन्म के जितने भी कर्म पाप और पुण्य है वो जल चुके हैं, खत्म हो गए हैं, मगर इस जीवन के जो पके हुए फल है उसको लेने पड़ेंगे। उसके बीच में वो रियलाइज हो सकता है, स्थित प्रज्ञ हो सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है, मगर प्रारब्ध नहीं छूटेगा, प्रारब्ध भोग से ही जाएगा। तो सुख दुख उसके भी आते हैं, मगर उसकी स्थिति क्या है, दुख में विचलित नहीं है, सुख में स्प्रिहा नहीं है, और बीत राग भय क्रोध है, ये सब हमने देखा। सब दुख उसको भी आएगा मगर वो विचलित नहीं होगा। क्यों विचलित नहीं होगा? आएगा जाएगा। दुख किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है, मैं शरीर
नहीं।
सुख की स्प्रिहा कि विष्णु का सुख बना रहे बना रहे बना रहे ऐसा ही चलता रहे, कभी नहीं होगा। नीरू जी जैसे चाहती हैं गर्मी 70 डिग्री बनी रहे बनी रहे बनी रहे, नहीं बनती है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो बीत राग भय क्रोध, राग राग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनात्मा से उसका वैराग्य है, अनात्मा के साथ में राग नहीं है, राग आत्मा के साथ में है, इसलिए वो बीत राग हो गया। हम लोग का राग कहाँ है? अनात्मा में है। अनात्मा मतलब BMI PFT OAT, BMI मतलब बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, PFT मीन्स ईगो, और OAT मीन्स जगत। हमारा राग जगत में है, और स्थिर प्रज्ञ का राग किस में है? ओम में है। तो इधर राग नहीं, राग भगवान की तरफ है। भय नहीं, क्यों नहीं भय उसको? क्योंकि अभय प्रद को पकड़ के बैठा है। ब्रह्म मतलब क्या? अभय। क्यों अभय? नॉन डुअल। दो ब्रह्मन तो है ही नहीं है। द्वितीयात भयम, दो होने से भय होगा, तो ब्रह्मन तो एक ही है, इसलिए भय नहीं है। क्रोध नहीं है, क्यों क्रोध नहीं है? बीत राग भय क्रोध, क्रोध क्यों नहीं है? विषयों की कामना नहीं है। विषयों की कामना क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उसका सुख विषयों पर निर्भर नहीं है, हमारा सुख विषयों पर निर्भर है। तो विषयों का सुख पाने के लिए कामना होती है, कामना में बाधा आने से क्रोध होगा, क्योंकि उसके पास में कामना ही नहीं है विषयों की सुख की, तो फिर क्रोध का कोई बात आती नहीं है। तो बीत राग भय क्रोध हो गया वो, तो दुख सुख राग भय क्रोध में वो उदासीन है। उदासीन, उदासीन वर्ड को अगर विच्छेद करें ना तो उसका मतलब होता उत आसीन। उदासीन मतलब इंडिफरेंट, उदासीन मतलब ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर बैठ के देख रहा है, सुख दुख हो रहा है, हम क्रोध आ रहे, चलो ठीक है। किम आसीत, किम आसीत कैसे रिलैक्स करता है, कैसे बैठा हुआ है? देखो वह मन के शासन में नहीं है, मन के शासन में नहीं है, और हम सब मन के शासन में हैं, मन जो कहता वैसे करते हैं, मगर वो मन के शासन में नहीं है। और जब भी खतरा देखता है तो अपने इंद्रियों को कछुआ जैसे अपनी लिम्स को विड्रॉ कर लेता है, समेट लेता है, ठीक उसी तरह से वो भी अपनी इंद्रियों को विड्रॉ कर लेता है। तो रिलैक्स विश्राम कैसे करता है? बोले बहुत सहज है, अपनी इंद्रियों को जो सहजता से हटा लेता है विश्राम है। देखो आप भी जब रात को सो जाते हो ना तो आपकी सारी इंद्रियां समिट गई, अब तो इंद्रियां काम नहीं करती हैं, मन भी काम नहीं करता है, तब आप क्या कहते हो? विश्राम में। तो क्या उस स्थित प्रज्ञ का विश्राम जो है सुसुप्ति की तरह है? सुसुप्ति में विश्राम होता है, ये सब हमारा अनुभव है कि डीप स्लीप में भी हम लोग सबको रिलैक्सेशन मिलता है, विश्राम मिलता है, और सवेरे उठ के हम बोलते हैं हम तो आज अच्छी तरह से सोए। उसमें फर्क है दोनों में। स्थित प्रज्ञ के विश्राम में और सुसुप्ति के विश्राम में फर्क है। सुसुप्ति के विश्राम के अंदर जो जीव सुसुप्ति में जाता है उसके भीतर में रस होता है। ये वर्ड आपने सुना है, रस, विषयों के सुख का कचौड़ी पकौड़ी वाला रस, वो उसका रस रहता है। मगर विश्राम काल में, सुसुप्ति काल में वो सोया हुआ है। जैसे ही आप जागे वो रस फिर से आ गया। देखो होता है कि नहीं, आप जब सोए थे तब आप इंजीनियर थे, जब जागे तब भी आप इंजीनियर हो, मगर बीच काल में विश्राम चल रहा है। तो आपके भीतर में जो भी वासना पहले थी सोने के पहले, विश्राम काल में, सुसुप्ति काल में, वो नहीं है। मगर जैसे ही जागे फिर से वो वासना आ गई, रस आ गया। मगर जो स्थित प्रज्ञ है उसके अंदर रस नहीं है, रस नहीं है। बहुत सुंदर। उसके बाद में तो स्थित प्रज्ञ में रस नहीं है, इसलिए विश्राम सहज अप्रयत्नात्मक है। प्रयत्न नहीं करना पड़ता उसके लिए, सहज है एकदम, एफर्टलेस है। किम ब्रजेत, वह असंग होकर संसार में विचरण करता है। ब्रजेत मतलब कैसे चलता है, असंग होकर चलता है। उसका संग किसके साथ है? दो ही चीजें हैं, हमारा संग अनात्मा में है, उसका संग आत्मा में है, इतना ही है। ठीक है, मगर भगवान यहां पर बताते हैं वो कैसा है। राग द्वेष वियुक्त ही, राग द्वेष उसमें नहीं है, राग अटैचमेंट नहीं है, द्वेष हेट्रेडनेस नहीं है, वियुक्त ही। कैसे वो बना राग द्वेष वियुक्त ही? तो सबसे पहले मत पर था, याद है वर्ड आपको, मत पर है। पहले वो मत पर हुआ, मत पर मतलब भगवान उसके लाइफ में सुप्रीम है, भगवान सुप्रीम है। देखो ठाकुर रामकृष्ण बोला करते थे कि गृहस्थ जीवन में भी आपको क्या करना चाहिए, एक हाथ से भगवान को पकड़ो, दूसरे हाथ से काम करो। तो क्या हम गृहस्थ जीवन में ऐसा करते हैं? हम दोनों हाथ से काम करते हैं, भगवान को छोड़ दिया। अब बोलते हैं फिर गृहस्थ आश्रम जब खत्म हो जाए ना, एक हाथ से तो पकड़ेंगे भगवान को। बोले जैसे गृहस्थ आश्रम खत्म हो जाए फिर दोनों हाथ से भगवान को पकड़ो। हम तो ऐसा करते नहीं है, हम तो गृहस्थ में भी नहीं पकड़ के बैठे हैं भगवान को। तो करने के लिए क्या होगा? देखो हमारे पास में जो प्यार है, जो प्रेम की पूंजी है ना, वो सारी की सारी अनात्म वस्तु में लगाई हुई। देखो हम एक ही वर्ड यूज करेंगे, अनात्म वस्तु का मतलब आपके घर में, पैसे में, मकान में, बच्चों में, माता में, पिता में, ये सारी अनात्म वस्तुएं। हमारी सारी पूंजी यहां इन्वेस्ट की हुई है। अब आपको मत पर होना है, मत पर का मतलब अनात्म वस्तुओं से छूट के आत्म वस्तु में आना है। तो आपको क्या करना होगा? आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चेंज करना होगा कि नहीं करना होगा? आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं वो आपकी पोर्टफोलियो चेंज करते हैं ना बीच बीच में, बेटर करना है, इधर से निकालो उधर लगाओ, ऐसा करते हैं ना। तो हमको भी अपना पोर्टफोलियो थोड़ा चेंज करना है। क्या करना है? कि आपको विषयों से जो प्रेम है उसको वहां से थोड़ा सा डिसइन्वेस्ट करना है, वहां से हटाओ, वैराग्य वहां से, और जो प्रेम बचा उसको कहां लगाओ? भगवान में लगाओ। तो ऐसा करने से तो आप अपूर्णता से पूर्णता की तरफ जाओगे, अपूर्णता से पूर्णता की तरफ जाओगे। चूंकि हम अपने आत्मा को नहीं जानते हैं इसलिए हम सब पूर्ण हैं, अपूर्ण है। चूंकि हम अपनी आत्मा को नहीं जानते इस वास्ते हम सब अपूर्ण हैं, और सारी जिंदगी हम इस अपूर्णता को पूर्णता में बदलने की चेष्टा करते रहते हैं। कैसे पूर्ण हो जाएंगे? ये मकान हो जाए तो पूर्ण हो जाएंगे, एक हो गया, बोले नहीं नहीं एक और चाहिए, बुढ़ापे के लिए उसका रेंट आएगा, दो हो गया, ये चाहिए वो चाहिए, इतने पैसे उतने पैसे, हम बराबर जिंदगी भर यही वो करते रह गए, पूर्ण होने की चेष्टा करते रहे, मगर पूर्ण आज तक नहीं हुए। आप में से कोई पूर्ण हुआ? नहीं हुआ। अच्छा आज तक करते करते पूर्ण नहीं हुए तो आगे हो जाओगे?
वो तो एक ही बार हो जाएंगे
आगे भी नहीं होंगे तो कैसे पूर्ण होगा ये? तो भगवान साधना बताते हैं, देखो केवल प्रेम से हृदय भरेगा और किसी चीज से नहीं भरेगा। विषय से आपका मन कभी भी नहीं भर सकता, विषयों से आपका राग द्वेष भरता जाएगा, मगर जैसे ही अगर आपने उस प्रेम का इन्वेस्टमेंट विषयों से हटा के भगवान की तरफ कर दिया तो उस प्रेम जब हृदय भर जाता है तो उस भरे हुए हृदय के अंदर फिर राग द्वेष नहीं रहता, फिर राग द्वेष का कोई उसके अंदर कोई किस्म की जो है इच्छा ही नहीं रहेगी आपकी। आप तब वस्तुओं को नहीं कह सकते हो कि नहीं अब हमको आपको ये चाहिए नहीं चाहिए, भाई खत्म। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हम करेंगे, अगर हमारा प्रेम जो है भगवान की तरफ होगा तो उससे कहते हैं आपका मन स्वच्छ होगा। प्रेम अगर अनात्म वस्तुओं से होगा तो हृदय आपका मैला होगा। क्यों मैला होगा? इसलिए मैला होगा कि आपकी वासना इम्प्रिंट जो है विषयों के आनंद के लगी रहेगी, उसकी क्रेविंग और होगी। जैसे आपने एक विषय का आनंद लिया, वो आनंद लेने के बाद में क्या होता है, वो विषय भी गया आनंद भी खत्म हो गया। पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, गए दुकान में पिज्जा भी खा लिया, आनंद भी हो गया, पिज्जा भी खत्म, आनंद भी खत्म। मगर पिज्जा ने आनंद दिया ये इंप्रेशन में रह गया। अब ये इंप्रेशन में रह गया, फिर जब उस गांव से जाते हैं दुकान देखी, अरे फिर पिज्जा की याद आएगी, स्प्रिहा। इसको और भगवान बताएंगे आगे कैसे स्प्रिहा क्या करती है। तो स्वच्छता आएगी, जैसे ही स्वच्छता आएगी दुख की हानि होगी, ये सब हम देख चुके हैं। जैसे ही माइंड प्योर होगा दुख की हानि होगी, दुख की हानि होगी, कैसे दुख की हानि होती है? अनात्म वस्तुएं हमें बराबर दुख देती हैं, हमने कई बार देख लिया। दुनिया में दो चीजें हैं, एक है आत्मा, दूसरी है अनात्मा। अगर आप विचार करोगे भाई दुख कहाँ से आता है तो बोलोगे आत्मा से आता है। नहीं, आत्मा से नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसका नाम सच्चिदानंद है। अगर सच्चिदानंद दुख देने लगे तो हमको नाम बदली करना होगा उसका। अगर सच्चिदानंद हमको दुख नहीं देता है तो लॉ ऑफ रिमाइंडर, हम लोग सब जो है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, दो ही चीजें हैं। अगर आत्मा हमें दुख नहीं दे सकता तो कौन दुख देता है? अनात्मा देता है, सीधा सीधी बात है। तो मन अगर साफ होगा तो दुख की हानि हो जाएगी। अगर मन अनात्मा से आत्मा की तरफ जाना शुरू कर दिया तो जो अनात्म वस्तु आपको दुख देती है उससे निवृत्ति हो जाएगी ना। दुख हमको अनात्मा देता है क्योंकि हम उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। अब हमने अपना प्रेम उस वस्तुओं से हटाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा हटा के हम सुधा भगवान की तरफ जा रहे हैं, आत्मा की तरफ जा रहे हैं। अब बताओ दुख की हानि हुई कि नहीं, अब खत्म हुआ कि नहीं? दुख तो खत्म हो जाएगा। और दुख खत्म हो जाएगा तो फिर क्या आएगी? प्रसन्नता आएगी, आप खुश हो जाओगे। तो इतनी दूर तक हम लोगों ने देखा था आगे। अब आज देखते हैं
नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्तिः, न चाभावयतः शान्तिः, अशान्तस्य कुतः सुखम्, अशान्तस्य कुतः सुखम्, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्तिः, अशान्तस्य कुतः सुखम्।
अब भगवान यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमें संयम कैसे बढ़ाना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो अयुक्त है, अयुक्त मतलब जो परमात्मा से नहीं जुड़ा, इतना ही समझे अभी, जो परमात्मा से नहीं जुड़ा है भगवान कहते हैं उसकी बुद्धि नहीं है। अरे ये क्या बात कर दिया भगवान, हम लोग सब अयुक्त है। भगवान क्या कहते हैं, हमारे पास बुद्धि नहीं है, वी आर क्रीम ऑफ इंडिया, हमको देख के तो हमको यहाँ पर अमेरिका में घुसने दिया है? अभी ट्रंप बाबा ने कह दिया कि हम ग्रेजुएट भी नहीं लेंगे प्रोफेशनल, हमको चाहिए मास्टर डिग्री होल्डर और डॉक्टरेट चाहिए, ऐसा क्रीम चाहिए हमको वहां से, शुद्ध क्रीम चाहिए। भगवान कहते हैं न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्त मतलब जो भगवान से नहीं जुड़ा है उसकी बुद्धि नहीं है, खत्म, ठीक है। न च अयुक्तस्य भावना, बोले ऐसे लोग, ऐसे अयुक्त में भावना भी नहीं है, फीलिंग भी नहीं है। लो भगवान कमाल कर रहे हो। न च भावयत शांति, बोले इन लोगों में जिनमें फीलिंग नहीं है उसमें शांति नहीं है। ये बात तो ठीक कही भगवान, हम लोग सब अयुक्त है, शांति नहीं है हमारे पास में। अच्छा अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसको पास सुख कहाँ है, सुख नहीं है। अच्छा तो अयुक्त कौन है, तो अयुक्त को समझने के लिए पहले आपको युक्त समझना होगा। युक्त कौन है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है। वो कैसे जुड़ा, हमने सब देख चुके हैं सब पीछे, आपको याद रखना होगा क्योंकि वो मत पर है, उसने भगवान को पकड़ा हुआ है, मत पर है, और उसने इंद्रियों को वश में किया है, और उसमें राग द्वेष नहीं है। तीन चीजें भगवान ने आगे बताई हैं हम लोग को, उसने मत पर को किया, उसको पकड़ के रखा है गोल, हमने उसको पकड़ के नहीं रखा है, अभी भी हमारे लक्ष्य के अंदर भगवान नहीं है अभी, नहीं पकड़े हम, मगर जो युक्त है उसने उसको पकड़ा है। कैसे पकड़ा, इंद्रियों को बस किया। इंद्रियों को बस किया मतलब ये पांचों ज्ञान इंद्रियां बाहर जाती हैं, तो वहां से उसको थोड़ा सा पकड़ के हटाया, हटा के फिर भगवान में लगाया। राग द्वेष वियुक्त ही, क्यों राग द्वेष वियुक्त ही, हमने देख लिया कि राग जो अनात्मा में था उस राग को उसने भगवान की तरफ किया। द्वेष, द्वेष भी नहीं है, युक्त ही, ठीक है। तो अयुक्त तो कैसा है, बोलो अयुक्त तो सीधा बात है, जो भगवान से नहीं जुड़ा है। क्यों नहीं जुड़ा है, बोले उसके पास उपाय नहीं है। क्या उपाय नहीं है, बोले उसने इंद्रिय निग्रह नहीं किया, उसने इंद्रियों का संयम नहीं किया, तो उसका मन किधर है, बोले मन विषय मुखी है, आत्ममुखी नहीं है। कितना सिंपल साइंस है, अयुक्त कौन है, जो भगवान से नहीं जुड़ा है। क्यों नहीं जुड़ा है, क्योंकि उसने संयम नहीं किया। नहीं किया तो क्या हुआ फिर, बोले वो तो फिर विषयों में उसकी तरफ, उसकी विषयोमुखी है, वो आत्ममुखी नहीं है। तो जो विषयोन्मुखी है, जो आत्ममुखी नहीं है, तो वो व्यक्ति साधन चतुष्टय नहीं है। साधन चतुष्टय मतलब उसके अंदर विवेक वैराग्य सट संपत्ति मुमुक्षुत्वम नहीं है। अगर ये नहीं है तो वो व्यक्ति श्रवण के योग्य नहीं है। यहां बुद्धि का मतलब ये हुआ कि वहां वो बुद्धि श्रवण जन्य ज्ञान रहित है। क्या समझे आप, यहां बुद्धि वो उस बुद्धि की बात जो कर रहे हैं यहां भगवान, उस बुद्धि की बात कर रहे हैं जो श्रवण जन्य ज्ञान रहित है। श्रवण का ज्ञान आपको कब होगा, जब आप साधन चतुष्टय संपन्न होंगे तब आपको श्रवण मिलेगा। जब आप संयम करके अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके, मन को कंट्रोल करके थोड़ा शुद्ध करेंगे, विषयों से जब हटेंगे तब मन शुद्ध होगा। जब मन शुद्ध होगा तब आपके मन में विचार आएगा कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, तब विचार आएगा, पहले नहीं आएगा। तो यहां बुद्धि का मतलब, यहां बुद्धि जो श्रवण जन्य ज्ञान रहित है, तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्त की जो बुद्धि है उसके अंदर श्रवण का ज्ञान नहीं है। सीधा मतलब हुआ, श्रवण का ज्ञान मतलब अध्यात्म ज्ञान नहीं है। और हमारे शास्त्र में जिसको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है वो बुद्धि नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है अपने ट्रेड में, प्रोफेशन में टॉप में हो, अपने प्रोफेशन और ट्रेड के अंदर वो टॉप में हो सकता है, मगर हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान में बोलो वो अयुक्त है, नास्ति बुद्धि, उसकी बुद्धि नहीं है। न च युक्त स भावना, भावना माने फीलिंग, मेडिटेशन, निधि ध्यासन। देखो वहां पर बुद्धि ने श्रवण नहीं किया, जिस बुद्धि ने श्रवण नहीं किया वो बुद्धि मेडिटेशन नहीं कर पाएगी, निधि ध्यासन नहीं कर पाएगी, क्योंकि ध्यान करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि हम किसका ध्यान कर रहे हैं। वो आपको कहाँ पता लगेगा? श्रवण करेंगे तो पता लगेगा किसके ऊपर ध्यान करना है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मज्ञान अभिनिवेश है, आत्मज्ञान में ऐसी बुद्धि लगती नहीं है। जिसकी बुद्धि बहिर्मुखी है उसको बोलो कि आप आओ यहां आत्मज्ञान के लिए, नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, कोई इच्छा ही नहीं है उसको वहां जानने की। अंतःकरण में तत्व जानने के लिए, तत्व ज्ञान जानने के लिए कोई प्रीति नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है ना। जैसे आशीष जी बेचारे पता नहीं कितनों को मेल डालते होंगे, आओ भाई आत्मज्ञान ले लो, कुछ पैसे नहीं देने हैं। क्यों नहीं आते लोग? इसलिए नहीं आते हैं कि उनकी बुद्धि अभी अध्यात्म के लिए प्रिपेयर नहीं है। मगर जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, तो भगवान ने कहा है सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अस्मृति, सुखेन ब्रह्म, ऐसे व्यक्ति का ध्यान में मन जो है ब्रह्म के पास जाता है और वो उसका सुख का संस्पर्श करता है, वो सुख का अनुभव करता है। ऐसा भी होता है, उस समय मन को सुख मिलता है। न च अभावयत शांति, और जिसका मन अस्थिर है, जो तत्व तक नहीं पहुंचा है, उसका मन कहाँ है? बहिर्मुखी है। जिसका मन अगर आत्मा में अंदर नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब कहाँ है? तो दो ही तो जगह, एक बाहर एक भीतर है। अगर भीतर नहीं है तो कहाँ मिलेगा? बाहर है, बाहर घूम रहा है, वो जगत में घूम रहा है, संसार के विषयों में घूम रहा है। तो जिसका मन श्रवण युक्त नहीं है, जिसने उसके ऊपर में निधि ध्यासन नहीं किया है, वो बहिर्मुखी है। वो ध्यान में बैठेगा कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। आप कल ध्यान करने बैठना, दूसरे बार हम जब आएंगे हमको बताना आप लोग सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए। अच्छा, ध्यान के भीतर ऐसा मानेगा उसको शांति नहीं मिलेगी। न च अभावयतः शांति, भगवान कहते हैं ऐसे आदमी को शांति नहीं मिलेगी। यहां शांति का मतलब हुआ दुख की निवृत्ति नहीं होगी, दुख की निवृत्ति नहीं होगी। हम ऐसी शांति की बात करते हैं जिस शांति के अंदर दुख नहीं होता है। अगर हमने अनात्म वस्तुओं को छोड़ दिया, अनात्म वस्तुओं को छोड़ दिया मतलब सारा अनात्म वस्तु को हम दुखालय कहते हैं, भगवान ने कहा, हम नहीं कहते हैं, भगवान ने कहा ये अनात्म वस्तुओं जितनी है वो सारा दुखालय है। अगर हमने उस दुखालय को नहीं छोड़ा तो दुख की निवृत्ति नहीं होगी। अनात्मा को छोड़ने से ही दुख की निवृत्ति होगी। तो ध्यान में जाके श्रवण युक्त जो बुद्धि होती है, दूसरी बुद्धि नहीं, आप बिना श्रवण के भी जाके ध्यान में सक्सेसफुल हो सकते हैं, मगर आप जीव के रूप में जाएंगे और जीव के रूप में वापस आएंगे। जैसे हम रात को सोने के टाइम में हम अगर इंजीनियर थे तो जागते भी इंजीनियर हैं, उसी तरह अगर ध्यान में बिना श्रवण किए हुए अगर आप गए, बिना आत्मज्ञान के गए, तो आप क्या होगा? आप जीव के रूप में गए, जीव के रूप में वापस आ गए। मगर श्रवण करने के बाद में किसके ऊपर ध्यान करना है उसको जानने के बाद में फिर अगर ध्यान किया हमने, ठीक ठीक से ध्यान किया, तो हम जीव के रूप में जाएंगे, ब्रह्म के रूप में आएंगे। हमको पता लग जाएगा कि मैं जीव नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं। बहुत बढ़िया। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो तो उसको सुख कहां मिलेगा? देखो शांति और सुख जो है एक चीज है, शांति और सुख दोनों एक चीज है, दोनों अनुकूल चीजें हैं। जहां आपको शांति मिल गई, सुख मिल गया। इस श्लोक में भगवान बताते हैं गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या है। देखो अब आप पीछे से अब उर्दू की तरह चलो इसमें है। अगर आपको सुख चाहिए तो क्या करना होगा, लास्ट बढ़ा गया ना, अशांत से कुतः सुखम, तो सुख के लिए क्या करना होगा, शांति चाहिए, है ना। सुख को चाहिए तो क्या चाहिए, शांति चाहिए। तो कैसे मन को शांत करो, ध्यान करो, है ना। भावना, भावना मतलब हमने ध्यान कहा, फीलिंग, ध्यान मतलब ध्यान करो, बहुत अच्छा। कैसे ध्यान करें, कैसे ध्यान करें, श्रवण करो। देखो छह अध्याय के बाद में छठे अध्याय में जाके भगवान ध्यान योग बताते हैं। पहले या अध्याय में विषाद योग, दूसरे में सांख्य योग। सांख्य योग मतलब आत्मा का ज्ञान भगवान ने दे दिया किसके ऊपर ध्यान करना है। अर्जुन को नहीं हुआ आत्मज्ञान, तब फिर बोलते हैं कुछ ब्लॉक है तुम्हारा, अभी रास्ता क्लियर नहीं है। क्या ब्लॉक है, बोले तुम्हारे बारे में अभी इम्प्योरिटी है, कर्मयोग करो। कर्मयोग करते 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 जब आपका मन साफ हुआ, उसके बाद में चौथे पांचवें अध्याय में बताते हैं कि गुरु के पास जाओ, वहां जाके फिर ज्ञान लो, उसको सेवा करो, उसको प्रश्न पूछो, उसको मिल जाएगा, फिर ध्यान करो। इतना प्रिपरेशन करना पड़ता है। और हम क्या चाहते हैं, सीधा डायरेक्ट ध्यान। कैसे होगा, नहीं होगा। तो ध्यान के लिए क्या करना होगा, बोले श्रवण करो, ज्ञान लो। कहां ज्ञान मिलेगा, अब तो आपको बता देना चाहिए कहां ज्ञान मिलेगा। ज्ञान यज्ञ में जाओ, समाधि कैंप में जाओ, या गीता क्लास में आओ तो ज्ञान मिलेगा। जब फिर बुद्धि ज्ञान युक्त होगी, फिर भावना, फिर आप ध्यान कर पाएंगे। और जब ध्यान कर पाएंगे तो फिर आपको शांति मिलेगी। जब शांति मिलेगी फिर सुख मिलेगा। देखा आपने कनेक्शन, देख लिया। सुख के लिए पीछे से चलो, सुख के लिए शांति चाहिए, शांति के लिए ध्यान चाहिए, ध्यान के लिए श्रवण चाहिए। श्रवण कहाँ मिलेगा, चिन्मय मिशन नाना हो। क्या करें, उपाय नहीं है, दूसरा कोई हमारा कंपटीटर नहीं है, हमारा मोनोपोली बिजनेस है। सो अयुक्त को ज्ञान नहीं, क्यों ज्ञान नहीं, असमाहित अंतकरण है उसका, असमाहित, उसका मन और बुद्धि में तालमेल नहीं है। तो पहले तालमेल बैठाओ मन और बुद्धि के अंदर में, तालमेल बैठाने के बाद में फिर सत्संग में जाओ। अभी जो आप कर रहे हो वो सत्संग है, सत्संग में जाओ और उसके बाद में ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद में ध्यान होगा, ध्यान के बाद में शांति मिलेगी। शांति मिलेगा मतलब सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। तृष्णा के रहते हुए सुख कभी भी नहीं मिल सकता। यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं, न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंध मात्रम अपि उपपद्यते इत्यर्थ। अभिप्राय है कि तृष्णा के रहते हुए तो सुख की गंध मात्र भी नहीं मिलती। तृष्णा मतलब आपके भीतर में कामनाएं हैं, कामनाएं। आप सोचते हो कि हमारी कामना पूर्ण होगी, हमको सुख मिल गया। शंकराचार्य जी कहते हैं गंध मात्र उसमें नहीं है, उन चीजों में कोई सुख नहीं है। और हम लोगों ने किंडल लाइफ में पढ़ा हुआ है कि विषयों में कोई सुख नहीं है, और हम लोगों ने कई बार प्रूफ भी कर दिया है कि विषयों में सुख नहीं है। दो चीजें देखनी पड़ती है, क्या देखनी पड़ती है, अगर विषयों में अगर सुख है तो जितनी बार भी हम विषयों का भोग करेंगे हमारी सुख की मात्रा उतनी बढ़ती जानी चाहिए। अगर रसगुल्ले में अगर 2 यूनिट सुख है तो 50वां जो रसगुल्ला हमको 2 यूनिट सुख देना चाहिए, मगर 50वां रसगुल्ला हमें दुख देता है, इसलिए रसगुल्ले में सुख है
नहीं,
नहीं। दूसरी बात, अगर मेरे को रसगुल्ला सुख देता है तो सबको देना चाहिए। अगर सचमुच रसगुल्ले में सुख है तो सबको मिलना, सुख मिलना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं होता है। इसलिए वस्तु में सुख नहीं है। सुख कहाँ है, मेरे भीतर वाला सुख हमने रसगुल्ले के ऊपर में सुपर इम्पोज किया। सुख का सोर्स एक है, हमने सुपर इम्पोज किया उसके ऊपर में। वो तो तृष्णा रहने से कुछ नहीं होगा। और विषयों का सुख जो है हमने सब जानते हैं क्षणिक है कि नहीं? क्षणिक है विषयों का सुख, क्षणिक है, कुछ टेम्पररी है, कुछ देर के लिए है, अन्यथा सुख नहीं है। अच्छा चलो भाई आगे देखते हैं फिर क्या होता है।
इंद्रियाणाम ही चरताम,
इंद्रियाणाम ही चरताम,
यन मनोनु विधीयते,
यन मनोनु विधीयते,
तदस्य हरति प्रज्ञाम,
तदस्य हरति प्रज्ञाम,
वायुर्नाव विवाम्भसि,
वायुर्नाव विवाम्भसि,
इन्द्रियाणां हि चरतां यन् मनोनु विधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां, वायुर्नाव विवाम्भसि,
इंद्रियाणाम ही चरताम यन मन अनुधीयते, जिनकी इंद्रियां विषयों में जाती हैं। तो फिर क्या होता है? यन मन अनुधीयते, और मन अनु में सब पीछे पीछे, मन पीछे पीछे जा रहा है। जिनकी इंद्रियां बाहर विषयों की तरफ जाती हैं, विषय कौन से हैं? कितने विषय हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच विषय हैं बस। तो जिनकी ये पांच ज्ञानेंद्रियां पांच विषयों की तरफ जाती हैं, तो वहां क्या होता है? बोले मन भी पीछे पीछे जाता है, मन अनुभूति। देखो अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग बात कर रहे थे ना कि एक होता है मनमानी और दूसरा होता है बुद्धिमानी। क्या करना चाहिए हमें? बुद्धिमानी करनी चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए। देखो यहां उससे भी लोअर स्टेज भगवान बताते हैं। मनमानी तो दूर रही, हम इंद्रियों के साथ बाहर जा रहे हैं, मन इंद्रियों के साथ पीछे जा रहा है। तो लीडर कौन है? इंद्रियां होगी। पहले हमने देखा मनमानी नहीं करनी चाहिए, मन का भी लीडर बुद्धि है, बुद्धि के हिसाब से चलो। हम लोग सब मनमानी करते हैं, यहां मनमानी से भी नीचे गए, इंद्रिय मानी हो गया, इंद्रियां जो करती है उसके हिसाब से चलते जा रहे हैं। एक बार नसरुद्दीन मुल्ला घोड़े पर जा रहे थे। आपने नसरुद्दीन मुल्ला का नाम सुना कभी? एक नसरुद्दीन मुल्ला थे, नसरुद्दीन मुल्ला मतलब लर्नर पर वाइज पर्सन। मुल्ला अपने घोड़े पर चढ़े जा रहे थे, अब किसी तरह से उनको इम्बैलेंस हो गया, लगाम छूट गई। तब वो क्या करे कि अपने उसके घोड़े के गले को ऐसे पकड़ लिया। तो बाजार में लोग जो जा रहे थे पूछते थे, मुल्ला कहाँ जा रहे हो? बोलते घोड़ा जहाँ ले जाए। अब लगाम मेरे हाथ में तो नहीं है, घोड़ा जहां ले जाए मैं चला जाऊंगा। देखो वही हाल हमारा है, क्या है? इंद्रियों के बस में चल रहे हैं, लगाम छूट गई, मन गया, इंद्रियां जिधर ले जाती हैं हम चले जाते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या कहते हैं? तदस्य हरति प्रज्ञाम, हरति प्रज्ञाम। बोले प्रज्ञा क्या चीज होती है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं आत्म अनात्म विवेक जाम नाशयति। आत्मानात्म हम लोग बहुत बार कहा ना, आत्मा अनात्मा का विवेक करो, आत्मा अनात्मा का विवेक करो, बराबर करते रहो। आत्मा अनात्मा, अनात्मा जो है पेरिशेबल है, बराबर चेंजिंग है, उसको छोड़ो। इस दुनिया में आत्मा भी मिलती है जो परमानेंट है, परमानेंट सुख देगा, उसको पकड़ो। यही तो हम आत्मा अनात्म विवेक करते हैं। देखो अनात्मा के बारे में आप सबको पता है, अनात्म जितनी भी वस्तुएं हैं। अच्छा अनात्म क्या, कौन सी वस्तु अनात्मा है? तो कहते हैं कि जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, जिसको छू सकते हो, जिसको चख सकते हो, जिसको स्पर्श कर सकते हो, वो सारी की सारी चीजें अनात्मा है। देखो कितनी सुंदर अच्छी डिफिनेशन है, सीधा काम। आपने टेबल को छुआ, सूर्य को देखा, अनात्मा। स्पेस अनात्मा, सब अनात्मा। तो हम इनको पकड़ के बैठे हैं। और ये सब के सब किस में आते हैं, किस कैटेगरी में? दुखालय में आते हैं सब। और दूसरी एक वस्तु है, बोले बोले आत्मा, वो क्या है? बोले सुख स्वरूप है, सच्चिदानंद है, दोनों ही अवेलेबल है, मगर फिर भी अनात्म वस्तु को पकड़ के बैठे हैं। तो आत्म अनात्म विवेक जाम नाशयति, इतनी देर तक सत्संग किया, सत्संग करते करते आपको पता लग गया, अरे तो अनात्म वस्तु है ये, इंद्रियां हमको कहां लेके जा रही है। अनात्मा अनात्मा हमने बहुत बार सुना है, और हमारी इंद्रियां कहां लेके जा रही हैं? इंद्रियां बाहर लेके जा रही हैं हमको ना, तो बाहर जाने का मतलब अनात्म वस्तु में जा रही हैं, हम चले जाते हैं उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। तो ऐसी प्रज्ञा जो सत्संग के अंदर मिली है हमको, आत्मनात्म जाम, जाम मतलब उससे पैदा हुई जो प्रज्ञा, जो ज्ञान है, वो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है अगर आप इंद्रियों के पीछे अगर चले जाएं, तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसको भगवान एक एग्जाम्पल से बताते हैं कि एक नाव है, बड़ा सावधानी से सुनना है इसको, एक नाव है, उसमें एक नाविक है, बोटमैन, उस नाव में यात्री भी है। और कहाँ जाना चाहता है यात्री? बोले यात्री संसार सागर से पार जाना चाहता है, समुद्र के पार जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? बोले मोक्ष के लिए जाना चाहता है, मोक्ष का आनंद लेने जाता है। वो जानता है कि संसार के इस तरफ में ये दुखालय है, अनात्मा में दुखालय है, और इस संसार सागर को पार करके हमको जाना कहाँ? उस पार जाना है। उस पार में क्या है? बोले वहां मोक्ष का आनंद है, आत्म सुख है। ठीक है, इसके बीच में तूफान आ गया, आप समुद्र में जा रहे हो, नौका में जा रहे हो, तूफान आ गया, हवा जोर से चलने लगी, तब वो क्या करेगा? उस नौका को वो हवा ले जाएगी, नहीं तो उधर ले जाएगी। मगर उस समय अगर नाविक, नाविक मतलब बोटमैन, अगर उसको नौका बंधक क्या होता है? एंकर, एंकर आप जानते हो ना, एंकर के साथ में नाव को बांध दे, फिर क्या होगा? फिर तो नौका इधर उधर नहीं जा पाएगी, वहीं रहेगी ना। जैसे तूफान बंद हुआ, फिर खोला, एग्जाम्पल समझ में आया? यहां लिखा है वायुर नाव इव अंबसी, देखो लास्ट वर्ड है उसके अंदर, वायु, वायु मतलब समुद्र के अंदर तूफान उठाया, नाव थी और उसके अंदर जो है वो क्या बोलते हैं उसको, पाल बोलते हैं जो ऊपर में कपड़ा लगा के रखते हैं, हवा से जो चलता है, सेलिंग, तो वो जो है उसको हवा उसको ले जाती है। अब इसको हम देखते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर के अंदर में, यात्री कौन है? यात्री जीव है, उस नौका में बैठा हुआ यात्री जो जीव है। समुद्र क्या है? इस संसार सागर को पार करना है हमको, इस संसार को बराबर हम सागर कहते हैं। क्यों सागर कहते हैं? क्योंकि उसका दूसरा छोर कभी नजर नहीं आता है हमको, इसी में घूमते रहते हैं, संसार सागर है। गंतव्य स्थल क्या है? गंतव्य स्थल हमको उस तरफ पार जाना है, मोक्ष का आनंद लेना है, ये हमारा ध्येय है, गंतव्य स्थल। नाव क्या है? नाव प्रज्ञा है, प्रज्ञा का मतलब आत्म अनात्म से विवेक युक्त जो हमारी बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो प्रज्ञा है। ये प्रज्ञा हमको उधर लेके जाएगी, यात्री कौन है?
जीव
है। समुद्र क्या है? गंतव्य स्थल क्या है? उस पार में जाना। क्यों जाना उस पार? मोक्ष का आनंद लेना है हमको, परमानेंट सुख चाहिए। नाव क्या है? नाव प्रज्ञा है, प्रज्ञा मतलब आत्मा अनात्मा से युक्त, विवेक युक्त जो बुद्धि उत्पन्न हुई है वो नाव है। नाविक कौन है? नाविक बुद्धि है। हु इज द बोटमैन? बुद्धि है। तूफान क्या है? रेस्टलेस इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां है ना, जब विषयों को देखती है तो रेस्टलेस हो जाती हैं, इंद्रियां हैं। एंकर क्या है? मत परा। अब देखो, जब हम प्रज्ञा रूपी नाव में बैठे हैं, प्रज्ञा रूपी नाव मतलब आत्मा अनात्मा के विवेक से जो हमारी बुद्धि उत्पन्न हुई है, उस नाव में हम बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? मोक्ष आनंद के लिए जा रहे हैं। उस समय इंद्रियां क्या कहती हैं? अरे कहां जा रहे हो, ये तो विषय आनंद, ये लो अभी तुरंत मिलेगा, पिज्जा खा लो, विषय आनंद अभी मिलेगा तुरंत, वो अपनी तरफ क्रांति है। तो जब वो इंद्रियां क्रांति है तो मन पीछे जाता है, मन उसके पीछे पीछे जाता है। बहुत अच्छा, तो उस टाइम में क्या करना चाहिए? बोले एंकर करो। एंकर क्या है उस टाइम के लिए? बोले साधक के लिए एंकर है भक्ति। उस समय भक्ति करो। जैसे ही आपका मन बाहर जाता है, इंद्रियां आपको लेके जाती हैं, मन पीछे दौड़ रहा है, इंद्रियों में जा रहा है, ये तूफान आया हुआ है, उस तूफान के टाइम में आपको क्या करना है? बोले आपको भक्ति करनी है। भक्ति आपका एंकर है, भक्ति करो। भक्ति जब जो एंकर भक्ति में जब लग गए, जब तूफान चला गया, फिर आगे बढ़ो। आया समझ में? अरे पहले रास्ता तो समझ लो, रोड मैप तो ले लो, उसके बाद में देखा जाएगा। तो तूफान जो है वो सेंस प्लेजर्स के लिए आपको बुलाएगा, और आपको उस टाइम में भगवान का नाम लेना है। इसलिए आपको जो भक्त है वो श्री कृष्णम शरणम मम, जो सगुण उपासक है वो बराबर भगवान कृष्ण 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 करेगा जैसे ही तूफान खत्म हो जाएगा। देखो विषयों का भी जो वेग आता है ना, वो परमानेंट नहीं होता है, कुछ देर के लिए होगा। आप उस कुछ देर को अगर किसी तरीके से टाल दो, खत्म हो गया। तो टालने का तरीका क्या बताया गया? भक्ति करो, एंकर करो। उसको बोलते हैं नौका बंधक। हिंदी में क्या बोलेंगे एंकर को? नौका बंधक। उसके साथ बांधो। आपने देखा है ना नदी के किनारे सब वो बंधा रहते हैं, नौका को बांध देते हैं, फिर जितना भी उसके अंदर तूफान आए नौका वहीं रहेगी। और जो निर्गुण उपासक है, एक सगुण उपासक हुआ, वो तो श्री कृष्ण भगवान का नाम लेगा या जो भी उसका इष्ट देवता होगा उसका नाम लेगा। जो निर्गुण उपासक है वो आत्मसुख के अंदर रमन करेगा, आत्मसुख में भीतर विड्रॉ कर लेगा, आत्मसुख के अंदर। तो स्थित प्रज्ञ संसार में पूर्ण संयम के साथ विषयों में जाता है। जो स्थित प्रज्ञ है, देखो स्थित प्रज्ञ का ये मतलब नहीं हुआ कि रियलाइजेशन के बाद में वो मृत्यु हो जाती है, ऐसा नहीं है। स्थित प्रज्ञ भी बाकी जीवन तो जीना है, तो बाकी जीवन जीना है तो क्या आंख कान सब बंद करके रखेगा? नहीं, उसको भी तो संसार में जाना है, मगर उसका कंट्रोल है, पूरे संयम के साथ जाता है। अगर संयम नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे कि आपके पास में दम नहीं है। सम और दम आपको मालूम है ना, कंट्रोल ऑफ माइंड इज सम, कंट्रोल ऑफ सेंसेस इज दम। अगर आपका इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है, तो इसका मतलब है दम की कमी है। और हमारे उपनिषद कहते हैं, तैतृय उपनिषद कहता है, तमस्य स्वाध्याय प्रवचन, समस्त स्वाध्याय प्रवचनी च, कंट्रोल ऑफ सेंसेस स्टडी एंड प्रीच। अपने संयम को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो, कंट्रोल करके स्टडी करो, स्टडी करके प्रीच करो, आत्मज्ञान को बढ़ाओ। समस्त, समस्त मतलब अपने मन को शांत करो, स्टडी करो और प्रीच करो, आगे पढ़ाओ। सबरी प्रसंग में रामायण में भी आता है, छठ दम सील बिरति बहुकर्मा, बिरति बहुकर्मा दम। देखो यहां पर भी दम आ गया। देखो तुलसीदास को भी सब पता था, सब दम हम सब पता था उनको। क्यों पता था? रामायण लिखने के पहले उन्हें पूरा वेदांत पढ़ा था, इसलिए रामायण के अंदर आप केवल राम सीता और हनुमान जी की वो कथा केवल नहीं है, अगर आप उसको ठीक से पढ़ें तो हर चौपाई के अंदर वेदांत भरा हुआ है, हर चौपाई के अंदर वेदांत है वहां पर। बढ़िया, तो ठीक है। उपनिषद में भी हम कहते हैं कि सम और दम चाहिए, तत्वबोध में भी हमने पढ़ा है ना, सम दम चाहिए सर संपत्ति। तो क्या एक दिन में हो जाएगा क्या? इट्स ए स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस है, कई दिन से कर, कैसे देखना है, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है। बहुत तो ऊंची आवाज में बोलते हैं, अब उनको बोलो कि ऐ आस्ते बोलो, आस्ते। एक दिन में होगा? कई दिन के प्रैक्टिस के बाद में आस्ते 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 वो कमती होगा। तो दम जो है बाहर की सुंदरता है और सम जो है भीतर की सुंदरता है। दम से अगर आप जो है अपनी इंद्रियों को संयम में करते हैं तो वो आपका बाहरी सुंदरता है, और मन को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो वो आपकी भीतर की सुंदरता है। तो कई लोग जो है ना प्रत्येक वाक्य के अंदर में एक अपशब्द बोल देते हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कैसे बोलते हैं, हर वाक्य में एक ऐसा स्लैंग वर्ड यूज कर लेते हैं। कई लोगों आपको इंडिया में बहुत मिलेंगे, हर सेंटेंस में एक स्लैंग वर्ड। तो कैसे आया? जन्म से आ गया क्या? नहीं, उसने आदत डाली है। अब उसको एक दिन ही बोलो कि नहीं आप शब्द जो है सेंटेंस में नहीं बोलोगे, एक दिन में तो नहीं होगा, बहुत दिन के प्रैक्टिस के बाद में ये होता है। जिसने अपनी इंद्रियों को ट्रेन किया है, मन को ट्रेन किया है, तो उस ऐसे व्यक्ति का मन चंचल नहीं होता। फिर हम श्री राम जी को देखते हैं, जब उनको पिता दीन ही कानन राजू, जब पिता ने उनको बोला कि जाओ कानन राजू, उनको तो वनवास कहा गया ना, मगर राम जी क्या कहते हैं कि हमको पिता ने क्या दिया? बोले हमको वहां कानन जंगल का राजा बनाया है, हम अयोध्या के राजा होने वाले थे, कल होना था अभिषेक, तो अब बीच के अंदर कुछ हो गया गड़बड़ सरबर, अब महाराज ने कह दिया कि आपको जाना है कल। तो राम जी कहते हैं कि मेरे को उन्होंने पिता ने क्या दिया? कानन राजू मतलब हमको जंगल का राज दे दिया, मगर वो विचलित नहीं हुए। देखो कितनी कैसी ट्रेनिंग है, इंद्रिय मन जो है उनका कितना कंट्रोल में है, तब ने ऐसे शब्द कह सकते हैं। देखो अगर मन की एक इंद्रियों के साथ भी अगर हम बाहर जाए ना तो पतन हो जाता है। कैसे पतन होता है? हम लोगों ने विवेक चूड़ामणि के अंदर देखा था, शब्दादि भी पंच विरेव पंच पंचत्व मापू स्वगुणे न बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नर पंच भी अंकित किम। देखो पांच शब्दादि पांच विषय हैं, शब्दादि भी पंच, शब्द स्पर्श रूप रसगंध केवल पांच विषय हैं, मगर आपको अगर हम बोले कि कितने विषय हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं वर्ल्ड के अंदर, तो आपका सुपर कंप्यूटर फेल कर जाएगा, आप इतनी बड़ी लिस्ट बना दोगे। मगर हमारे ऋषि मुनि कहते हैं बस केवल पांच विषय हैं, बस खत्म, पंच भी। अच्छा पंच पंचत्वापु, अगर एक भी अगर आपने इसके अंदर के साथ में जुड़ गए तो आप पंच भूत से बने हुए हैं ना, फिर पंचभूत महाभूत में चले जाते हैं, मतलब मर जाएगा आदमी। तो एग्जाम्पल देते हैं कैसा भाई, कुरंग हाथी, मातंग हिरन, पतंग मौत मीन मछली, और भृंगा हनीबी। देखो इन सब का भ्रमर लोक है, इनका सबका एक एक जो है ना इंद्रियां वीक है। जैसे हाथी की स्पर्श इंद्रिया, उसको पकड़ने का एक ही तरीका है कि एक हथनी को जो है एक उसके साथ में बांध दो पेड़ के साथ में, और उसके पीछे में बहुत बड़ा गड्ढा खोद के उसके ऊपर बिचारी से भर दो, फिर देखो जंगली हाथी कैसे दौड़ के आता है और उसमें गिर जाता है, पकड़ा गया। हिरन को अगर आपको पकड़ना हो या उसको मारना हो तो आप जो है कुछ म्यूजिक चला दो तो वो तुरंत खड़ा हो जाएगा, कहां से आ रहा है, और उस टाइम में हंटर जो है जाकर उसको मार देता है। सो कुरंग मातंग पतंग, पतंग का क्या है? पतंगा आपने दिवाली का देखा ना, कीड़े जो हमारे वो पतंगे से होते हैं, इंडिया में आपको बहुत नजर है, यहां तो आप लोग जलाते ही नहीं हो, पतंगा भी नहीं है यहां पर, वहां पर आप दिया जलाते हो सवेरे, देखते हो कितने पतंगे मरे पड़े थे चारों तरफ में। क्या है उनका जो है ये वीक है, आंखें जो वीक है वो बराबर उसमें जाना चाहती है, उसको देखना चाहती है, और वो जाता है उसके पास, जल के खत्म हो जाता है। पतंग मीन, मीन उसको रस, उसकी वीकनेस क्या है, रस। आप अपने एक्वेरियम में देखिएगा ना, मछली कंटिन्यूसली मुंह ऐसे ऐसे करती रहती है। तो क्या होता है फिर, जो एंगलर होता है वो क्या करता है, उसके अंदर जब वो लगाता है ना कांटे के अंदर में वो बेट जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा बहुत कुछ लगाता है उसके अंदर में, बढ़िया घी, उसके बाद में क्या
चावल,
चावल घी और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या सब, एग्स ऑफ एंड्स एंड बहुत कुछ लगा के फिर उसको छोड़ता है। तो मछली आती है पक, अच्छा उसी टाइम में वो सूता को टानना होगा, नहीं टानेगा तो खा के चली जाएगी, मगर उसके भीतर में वो कांटा रहता है, अगर टान दिया बस उसका मुंह फंस गया, मृत्यु। मीन भृंगा हनी बी, भ्रंवर, भ्रंवर क्या होता है, जब वो लोटस के अंदर कमल में बैठता है ना, कमल जो है सवेरे खुलता है रात को बंद होता है, तो भ्रंवर उसके अंदर रस पीते 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 जो है शाम हो गई, अब वो उसमें से निकलता नहीं है और शाम को कमल बंद हो जाता है। भ्रंवर में इतनी ताकत है कि उसको काट के निकल जाए, नहीं निकलता, सवेरे मर जाता है उसका। बोलते हैं एक एक क्रीचर का तो ये हाल है, तो हमारा हमारा क्या हाल है, हमारे पांचों इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो इनका ये हाल होता तो हमारा क्या हाल होता है, हमारा भी वही हाल होता है, अनर्थकारी परंपरा में पड़े हुए हैं, घूम रहे हैं, जीवन मृत्यु के चक्कर में लगे हुए हैं। तो जो मन इंद्रियों में चला जाता है, इंद्रियों के चरण के साथ, इंद्रियों के साथ बाहर चला जाता है, तो वो विवेक जनित जो प्रज्ञा है उसको भी नाश कर देता है, उसको भी नाश कर देता है। देखो अगर हम दो तीन दिन तक अगर हम अपनी साधना बंद कर देना, फिर मन नहीं बैठता है, मन नहीं बैठता है। आप लोगों ने ख्याल किया होगा कि अगर आपने एक लेसन दो लेसन अगर बंद कर दिए, तीसरे लेसन में आने का मन नहीं करता है, मन नहीं करेगा। तो भगवान अब ब्रजेत किम का टॉपिक का अब खत्म करने जा रहे हैं, 68वां नंबर श्लोक, 8 तो बच गए यहाँ पर, अच्छा ठीक है, अगले दिन देख लेंगे उसको। ओ
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।